नमस्कार सुतो, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज भारत के स्वामी जी की 160वीं जयंती मना रहे हैं। स्वामी जी धर्म, आदर्श, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, साहित्य के ज्ञाता थे। उनके विचार कार्य आज भी युवाओं को प्रेरणा देते हैं, प्रेरणादायी है। आज राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 के फेस्टिवल की थीम विकसित युवा विकसित भारत रखी गई है। आज हमारे साथ गांधीवादी लोहियावादी विचारक डॉक्टर अनूप सर जुड़े हुए। अनूप सर, मोबाइल लाइन पे स्वागत सर आपका।
नमस्कार योगेश भाई, नमस्कार।
जी सर। सर, क्या राष्ट्रीय युवा दिवस पर क्या संदेश देना चाहेंगे सर?
राष्ट्रीय युवा दिवस जो स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में हर साल प्रायोजित किया जाता है, मनाया जाता है, उसमें मेरा सीधा और सीधा एक ही बात युवाओं से कहना है कि आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। अगर आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ रहे हैं तो आप अपने जीवन को समझ लेंगे, और जब आप अपने जीवन को समझ लेंगे तो आप इस बात को समझ लेंगे कि हमारा जो जन्म हुआ है वो किस लिए हुआ है, हमें किस चीज के निर्माण करने के लिए हुआ है और हमारी अहमियत क्या है। आज सबसे बड़ी बात है कि जो पैकेज सिस्टम चल रहा है, जो कारपोरेट जगत का दुनिया चल रहा है, जिसमें कारपोरेट हावी है, उसमें युवाओं को दिशा भ्रमित कर दिया गया है। एक तो युवा दिशा भ्रमित खुद हो जा रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन सबसे ज्यादा उनको दिशा भ्रमित कर दिया जा रहा है, उनके अपने अहमियत को ही समाप्त कर दिया जा रहा है और उनको पैकेज सिस्टम में बांधने का प्रयास किया जा रहा है, और पैकेज सिस्टम में बांध करके उनको समाज से दूर कर दिया जा रहा है। तो यही हमारा कहना है कि युवा सबसे पहले स्वामी विवेकानंद को पढ़े, चंद्रशेखर आजाद को पढ़े, भगत सिंह को पढ़े, गांधी को पढ़े, लोहिया को पढ़े, वो समझे कि हमारी अहमियत क्या है और हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है।
सर, क्या 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम रखी गई है विकसित युवा विकसित भारत के माध्यम से, क्या
जी
युवाओं को संदेश दिया जाएगा सर?
देखिए, ये थीम बहुत बढ़िया है, विकसित युवा विकसित भारत। लेकिन क्या थीम रख देने से युवा विकसित हो जाएगा? पहला सवाल तो यही है। और आप युवाओं को विकसित करने की बात कर रहे हैं तो क्या उतने माप में या उतनी मात्रा में आपने उन संसाधनों को इकट्ठा किया है, उतने बड़े संसाधन जुटाए हैं जिससे युवा विकसित हो जाए? सबसे ज्यादा युवा कहाँ है आज? देखिए, सबसे ज्यादा युवा आज भारत में है। भारत गांवों का देश है, गांधी कहते थे, और स्वामी विवेकानंद का कहना था कि गांवों का विकास करो। लेकिन क्या वास्तव में आज जो विकास थीम और विकास भारत का थीम दिया गया है, उससे युवाओं को विकास हो रहा है? आज आप देखिए कि गांव उजड़ रहा है, गांव में कोई व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्था क्यों नहीं? आजादी के पहले और जब अंग्रेज हमारे देश में आए, उसके पहले के अगर भारत को देखिए तो संपन्न भारत था, हमारा गाँव खुशहाल था। लेकिन आज गाँव उजड़ रहा है, क्या गाँव में युवा नहीं रहते? उनके लिए सरकार कौन सी व्यवस्था कर रही है? और सरकार शब्द छोड़ दिया जाए तो आजादी के बाद की जो सरकारें बनी, जो व्यवस्था बनी, उनके लिए कौन सी व्यवस्था की युवाओं के लिए? तो यह तो योगेश भाई एक मोटा मोटा थीम है, युवा भारत, युवा विकास, युवा भारत, विकसित भारत। ये सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का एक तरीका है, एक फंडा है कि युवाओं को किस प्रकार से अपने फांस में फंसाया जाए। इससे कुछ होने वाला नहीं होगा उस समय जब शिक्षा फ्री में होगी। आज देखिए कि शिक्षा को निजीकरण के तरफ ले जाया जा रहा है। निजीकरण के तरफ अगर शिक्षा को आप ले जाएंगे तो उससे युवा विकसित नहीं हो सकता है, और निजीकरण को हावी करके आप देश को मजबूत नहीं बना सकते। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि अगर सरकार स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद को मानती है तो सबसे पहले युवाओं के लिए और हिंदुस्तान के भविष्य के लिए शिक्षा को प्राइमरी स्तर से लेकर के स्नातकोत्तर स्तर तक निःशुल्क करे और सबकी शिक्षा एक समान करे, चाहे वो राष्ट्रपति हो चाहे चपरासी हो, सबके बच्चों के लिए शिक्षा एक समान करे, तब जाकर के विकसित युवा और विकसित भारत का नारा सफल हो सकता है।
जी सर। सर, स्वामी जी के कई विचार है, उसमें से आज आज हमने एक विचार लिया है, उसमें
जी
से हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक
जी
विकास हो, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। सर,
जी
ये मैसेज युवाओं के लिए क्या संदेश दे रहा है?
स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि मैन मेकिंग इज माई मिशन, मानवता का निर्माण करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। योगेश भाई, आज आप देखिए कि युवा हर क्षण टूट रहा है, वह मानसिक रूप से कमजोर हो रहा है, शारीरिक रूप से कमजोर हो रहा है, उसकी सोचने की क्षमता समाप्त हो रही है। इसका क्या कारण है? इसका सीधा सीधा कारण है कि युवाओं को जो चाहिए आत्मनिर्भरता के लिए वो नहीं हो पा रहा है। युवाओं को वो एक ऐसी समाज चाहिए थी जो उसको सुदृढ़ता दे, जो उसको मजबूती प्रदान करे, लेकिन आज हम जिस कारपोरेट जगत का निर्माण करते जा रहे, हम जिस क्षणिक दुनिया का निर्माण करते जा रहे, हम जिस पैसे की दुनिया का निर्माण करते जा रहे, उसमें युवा हताश और उदास हो गया है। वह समझ नहीं पा रहा है कि हम कहाँ जाए, क्योंकि तो जो समाज और परिवार की अपेक्षा है वह युवाओं से इस प्रकार की हो गई है कि युवा नौकरी करे और पैसा लेकर के आए, लेकिन नौकरी कहाँ उपलब्ध है? आप देखिए कि युवा जाए तो जाए कहाँ, कौन सा काम करने जाए? तो युवाओं को तो भटकाने का काम किया गया है, इसलिए युवा कमजोर होता जा रहे हैं, मानसिक रूप से कमजोर होता जा रहे हैं। उसके अगर मन स्थिति को मजबूत करना है, कहा गया है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो भारत की सरकार और भारत की व्यवस्था को चाहिए कि युवाओं का उपयोग करे। अपने देश में सोर्सों की कमी नहीं है, लेकिन उन सोर्सों पे कुछ लोगों का राज हो गया है, कुछ लोगों का जमावड़ा हो गया है, सारे सोर्स कुछ शक्तियों में केंद्रित हो गए हैं। आज जरूरत है कि उन सोर्सों को, उन संसाधनों को विकेंद्रीकृत किया जाए, और जब संसाधन विकेंद्रीकृत होंगे तो उसमें युवा बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। युवा जब भाग लेंगे, जब काम उनके पास आएगा, समाज से जुड़ेंगे, तो उनकी मन स्थिति मजबूत होगी, और जब मन स्थिति मजबूत होगी, शारीरिक स्थिति मजबूत होगी, तो देश स्वतः मजबूत होने लगेगा, क्योंकि युवा जो होते हैं वह देश के रीढ़ होते हैं। तो आज तो रीढ़ को कमजोर इसलिए किया जा रहा है कि वह आंदोलन के रास्ते को न अपनाए और समाज की बात न करे।
जी सर, क्या आजकल के युवाओं में जो उच्च शिक्षा के लिए या तकनीकी शिक्षा के लिए शहरों की जो दौड़ है वो निरंतर बढ़ती जा रही है?
बिल्कुल।
लेकिन सर, क्या एक युवा शिक्षा के लिए जो शहरों की दौड़ कर रहे हैं, क्या उसके स्थानीय स्तर पर क्या वो शिक्षा उपलब्ध नहीं है, और क्या तकनीकी शिक्षा जो उपलब्ध नहीं है तो उसके कारण रोजगार भी एक बाधा बन रही है सर?
देखिए, जब शिक्षा नहीं रहेगी और तकनीकी शिक्षा नहीं रहेगी तो रोजगार कहाँ से मिल पाएगा? आज जिस तकनीकी दुनिया का निर्माण हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में हम कह रहे हैं। दूसरी बात जो हम कहना चाह रहे हैं कि शहर के तरफ युवा क्यों पलायन कर रहा है, क्यों भाग रहा है? क्योंकि जो उसके आसपास की व्यवस्थाएं है, जो उसके आसपास के शिक्षण संस्थाएं होनी चाहिए, वह नहीं है। वह सरकार नहीं करना चाहती, वह आजाद भारत की व्यवस्था नहीं करना चाहती, क्योंकि वह पूरे सिस्टम को आजाद भारत के गांवों से दूर ले जाना चाहती है। उसका मकसद है कि गांवों को तोड़ा जाए, गांवों का पलायन हो, किसी प्रकार से गांव समाप्त हो और सारी व्यवस्था शहरों में ले जाए। शहरों में क्यों ले जा रहे भैया? जब भारत में 7 लाख 8 लाख गांव है, तो आप भारत के गांवों को क्यों नहीं जोड़ करके एक एक बढ़िया कॉलेज, बढ़िया स्कूल, बढ़िया तकनीकी शिक्षण संस्थान खोल रहे? तो नहीं, शहरों में सब कुछ खोला जा रहा है। इसलिए वहां पे खोला जा रहा है कि शहर में कुछ लोग ही पहुंच पाएंगे, पैसे वाले लोग पहुंच पाएंगे, गरीब का बच्चा नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हमने शुरू में ही कहा था कि डॉक्टर लोहिया का एक नारा था कि राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। अगर गांव में व्यवस्था कर दिया जाए शिक्षा को, 10 गांवों को जोड़ करके एक केंद्रीय विद्यालय बना दिया जाए, तकनीकी के युग में एक ITI स्कूल खोल दिया जाए, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल दिया जाए, तो देखिए युवा बराबर रुक जाएगा, वो अपने गांव में काम कर लेगा, मन स्थिति उसकी मजबूत हो जाएगी, उसको गांव में हर व्यवस्था मिल जाएगी। लेकिन यह कह देना कि युवा स्किल नहीं हो पाया, इसमें सरकार और व्यवस्था की कमी है, समाज की कमी है कि युवाओं के लिए स्किल होने के लिए, मजबूत होने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। इसमें युवा का दोष नहीं है, सरकार और समाज और व्यवस्था चाहती तो युवा पूरी तरीके से स्किल हो जाता। आज युवाओं को स्किल नहीं किया जा रहा है, और स्किल के नाम पर देख लीजिए कि कंपनी में 12 घंटे उनसे काम कराए जाते हैं, और मजदूरी कितनी दी जाती है? 200-300 रुपया, और 12 घंटे उनसे काम कराए जाते हैं। कहा जाता है कि आप अनस्किल हो, तो अनस्किल वो थोड़ी नहीं है, अनस्किल हमारी सरकार है, अनस्किल हमारी व्यवस्था है, जो स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद की बात तो करती है लेकिन स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद के रास्ते पे चलना नहीं चाहती है।
सर, क्या देश के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने स्वामी जी को लेकर बड़े बड़े वाक्यात कहे, जिसमें भगिनी निवेदिता हो, महात्मा गांधी जी हो, या फिर सुभाष चंद्र बोस हो, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर हो, उन्होंने कहा है कि अगर स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ने के बाद भारत को जानने और समझने के लिए जो आप अपने आप में एक स्वामी जी को पढ़ने के बाद भारत को जानने लगोगे, समझने लगोगे, सर तो ये युवाओं के लिए कितना एक मैसेज है?
स्वामी विवेकानंद कहा कहते थे कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। अगर इस पंक्ति को समझ लिया जाए तो सिस्टर निवेदिता को, महात्मा गांधी को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, और आपने सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया, सबको समझा जा सकता है। उनका मकसद था एक ऐसा भारत बनाना, एक ऐसा राष्ट्र बनाना जो अपनी सीमा का विस्तार न करता हो, लेकिन अपने सीमा के अंदर किसी को प्रवेश भी न करने देता हो, जो दूसरे पे अतिक्रमण न करता हो। परंतु आज आप देख लीजिए कि आज क्या चल रहा है। आज जो राष्ट्रवाद है उस राष्ट्रवाद को तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है। स्वामी विवेकानंद का जो राष्ट्रवाद था एक ऐसा राष्ट्रवाद था जो बराबरी के समाज का निर्माण करना चाहता था, जो चाहता था कि जो उजाला देश के अंदर हो वो उजाला देश के एक सुदूर गांव के एक कुटिया तक पहुंचे। इसलिए उन्होंने कहा था कि मैन मेकिंग इज माई मिशन, और मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते थे। वह मनुष्य मनुष्य में विभेद नहीं करना चाहते थे। उनका मकसद था कि मनुष्य मनुष्य में बराबरी हो, एक मानवता की दुनिया बने। और अगर स्वामी विवेकानंद के विचारों को अपना लिया जाता तो वास्तव में आज दुनिया मानवता की दुनिया बन जाती, डॉलर की दुनिया नहीं बनती, पैसे की दुनिया नहीं बनती, वैश्वीकरण की दुनिया नहीं बनती, बल्कि एक मानवता की दुनिया बनती।
ये थे आज हमारे साथ डॉक्टर अनूप सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी के माध्यम से राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं के लिए संदेश और राष्ट्रीय युवा दिवस पर 2023 की थीम विकसित युवा विकसित भारत को युवाओं के लिए एक सरल रूप से युवाओं को समझाए और मोबाइल वाणी के माध्यम से श्रोताओं को समझाया। अनूप सर, मोबाइल वाणी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
बहुत बहुत धन्यवाद योगेश भाई आपको, स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में सत सत नमन
जी। छिंदवाड़ा वैलेंस से आपका दोस्त योगेश, धन्यवाद।